السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے پاکستان کے اندر معاشی صورتحال پہ، دفاعی اخراجات اور سود کی ادائیگی، مالیاتی خسارہ ریکارڈ سطح پہ یعنی 19 خرب ہو گیا ہے، اس پہ اوپر گفتگو ہوگی، کیا چیلنجز بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایکسچینج ریٹ میں کمی، برآمدات میں کیا اس سے اضافہ ہو سکے گا یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جو ڈسکاؤنٹ ریٹس ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا جو انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں. پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ بھارت کے انتخابات کے اوپر ہے. حزب اختلاف کی جانب سے اعتراضات آ رہی ہیں انتخابات کے اندر ہینڈلنگ کے اوپر، اور خاص طور پہ اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینس جو ہے اس کے خلاف باقاعدہ ایک منظم تحریک کی سی صورتحال نظر آتی ہے. پروگرام کا ہمارا تیسرا سیگمنٹ، بات ہم کریں گے پاکستان کے اندر کم سن بچیاں یا لڑکیاں، ان کے خلاف زیادتی کے واقعات، سوسائٹی، حکومت، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور آخر میں بات ہوگی کرکٹ ورلڈ کپ کی، کرٹن ریزر ہے، جائزہ لیں گے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی ورتھ کا، بھارت کی ٹیم کی ورتھ کا، اور موسٹ فیوریٹس اس وقت کون سے ہیں. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. آپ نے ہماری خبروں میں بھی سنا ہوگا پاکستان کی حکومت کے اخراجات اور آمدن کے درمیان عدم توازن کے سبب رواں مالی سال کے جو پہلے 9 ماہ کے دوران مالیاتی خسارہ 19 خرب سے تجاوز کر گیا ہے. وزارت خزانہ کے جاری کردہ تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق مالیاتی خسارہ ملک کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی کے 5% تک ہے. یکم جولائی 2018 سے شروع ہونے والے مالی سال میں مارچ 2019 تک کا خسارہ ایک دہائی کے عرصے میں 9 ماہ کے دوران ہونے والا بلند ترین خسارہ ہے. حماد اظہر صاحب جو کہ منسٹر فار ریونیو ہیں، کچھ دیر پہلے پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی سعودی عربیہ سے جو $3 ارب کا تیل ادھار دینے کی پیشکش ہوئی ہے، اور جس پر عمل درآمد آئندہ ماہ سے شروع ہو جائے گا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بیلنس بھی ہوگا اور اس میں ایکسچینج ریٹس جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر بھی فرق پڑے گا، غیر یقینی صورتحال جو ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ 3 سال کے بعد جو معاشی نمو ہے وہ بہتر ہوگی. ایکچوئل سچویشن ہے کیا، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈائریکٹر جنرل اینڈ ڈین ایٹ نسٹ بزنس اسکول، فارمر فائنانس ایڈوائزر ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
تھینک یو فار انوائٹنگ می.
جی ڈاکٹر صاحب، کیسے چل رہے ہیں یہ مالی معاملات، اور یہ جو جس طرح سے روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے، ایکسچینج ریٹ میں جو کمی آئی ہے، آپٹیمزم تو یہ ہے کہ برآمدات میں اضافہ ہوگا، آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، یہ ایکسچینج ریٹ کیسے ریفلیکٹ کرے گا؟
دیکھیں، ایک تو یہ جو بھی چیزیں آج ہو رہی ہیں نا، اس کا ایک ماضی سے ایک تسلسل بھی ہے
جی،
اور اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہو سکتا ہے کہ جب یہ حکومت آئی تو ان کو معیشت جو ہے بڑے برے حالت میں ملی تھی، اس میں کوئی دو اوپینین نہیں ہے. لیکن یہ برے حالت میں ملی تو اب ان کی ریسپانسبلٹی تھی کہ اس کو ذرا بہتری کی طرف لے کے جاتے. میرے خیال میں اس وقت جیسا میں سمجھتا ہوں کہ سمجھ میں نہیں آیا انہیں کہ کتنی خراب ہے، اور پھر اس وقت جو مین پاور ان کے پاس جو ان کو ہینڈل کر رہے تھے وہ بھی غالباً اتنے بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے کہ جو وقت کا تقاضا تھا کہ جس طریقے سے کیا جاتا. تو یہ چیزیں ایگریویٹ ہوتی چلی گئی ہیں. ہم نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ میڈیسن پیشنٹ کو نہیں دیے ہیں، جس کے وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ اس کی بیماری خراب سے خراب ہوتی گئی ہے، اور جس خسارے کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ واقعی ایک دہائی میں میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ ہے اس مدت میں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جب مالی سال ختم ہوگا 2018-19 کا
جی،
تو ہمارا بجٹ کا خسارہ 7.5% سے کم نہیں ہوگا،
صحیح،
جو یہ کافی بلند ہوگا. اور یہاں سے پھر آئی ایم ایف کا پروگرام شروع ہوگا آگے کی طرف میں،
ٹھیک ہے.
تو یہ جو پورا مالی سال گزرا ہے یہ ہم آئی ایم ایف کھیلتے کھیلتے میں گزارا، کوئی پالیسی ٹھیک ڈیسیجن ہم نے نہیں لی. ہم نے ٹائم پہ جو ڈیسیجن لینا چاہیے تھا وہ ہم نے نہیں لیا. وقت گزرتا گیا اور ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور بس یہ آئی ایم ایف میں جانا،
یعنی مریض جسے آپ نے وضع کیا کہ
اس میں کھیل میں وقت گزرا. اور دیکھیں، جب معیشت کو ٹائم پہ میڈیسن کے اور پالیسیز کی ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم ٹائم پہ وہ پالیسیز نہیں لیں گے تو چیزیں بگڑتی جاتی ہیں، اور یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں یہ اسی بگڑنے کی وجہ سے ہوا ہے.
ایک تو یہ اس میں سوال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اور جو بڑے جید اور بڑے نام ہیں معیشت کے اندر، وہ ایک 20 رکنی مشاورتی کونسل بھی ہے. سو کیا مشاورتی کونسل جو مین لیڈرز تھے, لیڈنگ پلیئرز تھے, اس کے اندر ہینڈلر تھے, ان کو یہ تجویز آ رہی تھی کہ چلے جائیں آئی ایم ایف کے پاس, یہ چیزیں تاخیر سے نہ کریں, اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, اور اب جب کہ یہ مریض اس نہج پہ آ گیا ہے, وہ مزید ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے اس کی صورتحال, سو اب اس کو افاقہ کیسے ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, اس ایڈوائزری اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل جس کا آپ نے کہا, میں بھی اس کا ممبر ہوں.
جی, مجھے بتائیں.
تو یہ اس میں یہی میرے خیال میں اس اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل نے ایک ہی کام کیا ہے جب سے یہ تشکیل پائی ہے اس نے, اور یہ ہے کہ اس نے مینڈیٹ دیا گورنمنٹ کو کہ آپ چلے جائیں. اور یہ کب دیا تھا؟ سپٹمبر کے مہینے میں دیا تھا. لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے وقت پہ یہ آئی ایم ایف میں جانے کا فیصلہ بہت ڈیلے کر کے کیا ہے, یہ بالکل غلط ہے. دیکھیں, 18 اگست کو تو یہ حکومت وجود میں آئی ہے, اور سپٹمبر میں انہوں نے جا کے انڈونیشیا میں ہمارے اس وقت کے وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات کی, اور وہاں پر انہوں نے اپنا کہہ دیا کہ جی ہم آئیں گے آئی ایم ایف میں. انہوں نے کہا جی آپ ہمیں لکھ کر دے دیں. تو یہ کام تو سپٹمبر سے شروع ہو گیا تھا,
ٹھیک ہے,
لیکن اس میں یہ تھا کہ جب آئی ایم ایف کی ٹیم آئی نومبر کے مہینے میں, 3 ہفتہ گزارا یہاں پر, 3 ہفتے گزارنے کے بعد انہوں نے کچھ ہمیں کہا کہ ٹھیک ہے پرائر ایکشنز آپ نے یہ کرنے ہیں, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا بیانہ دینا,
بالکل,
یا ڈاؤن پیمنٹ کرنا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, تو آپ نے پروگرام لینا ہے تو آپ پہلے یہی اقدامات کریں, اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئیں. تو یہ وہی اقدامات تھے جو آج ہم نے سارے کیے ہیں, اب تک کر رہے ہیں,
صحیح,
لیکن اس وقت ہم جہاں کھڑے تھے اور وہاں سے جہاں چھلانگ ہمیں لگانا تھا وہ بہت اس میں دور ڈسٹینس تھا.
ٹھیک ہے,
مثال کے طور پہ اس جب یہ حکومت آئی تھی تو 122 سے 124 روپے پر ڈالر تھا ایکسچینج ریٹ,
جی,
اور وہ اگر کہہ رہے تھے کہ آج کی سطح پہ پہنچانا تو آپ سوچیں کہ 25 روپیہ یا 26 روپیہ, تو ایک جمپ پہ تو آپ ایکسچینج ریٹ کو نہیں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں.
صحیح.
تو انہوں نے وقت مانگا کہ ہمیں وقت دے دیں آپ. اسی طریقے سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کے حوالے سے تھا, جب یہ آئے تھے تقریباً 6.6% ڈسکاؤنٹ ریٹ تھا ہمارا, انہوں نے غالباً یہی ٹارگیٹ دیا تھا جو آج ہم جہاں پہنچے ہیں. تو ایک جھٹکے میں 600 بیسس پوائنٹ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی آپ نہیں بڑھا سکتے تھے.
صحیح.
تو انہوں نے آہستہ 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 بڑھاتے چلے گئے, اور جب بڑھاتے چلے گئے تو اس دوران میں پین فل ہوتا گیا, کیونکہ بجلی کی قیمت بڑھائی گئی, گیس کی قیمت بڑھائی گئی, سب کچھ کرتے رہے. اٹ واز ویری پین فل, پرائر ایکشنز وی ویری ویری پین فل. تو اس کی وجہ سے پرائم منسٹر بھی تھوڑا پریشان ہو گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. 2 مرتبہ ان کی ملاقات ہوئی آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے کہ بھائی جتنے اقدامات ہم نے کرنے تھے کر لیے, اب آپ پروگرام کی طرف بڑھے ہیں, لیکن وہ بزد تھے کہ نہیں, جب تک یہاں نہیں پہنچیں گے, جو ہم نے لکیر کھینچی ہوئی ہے اس لکیر تک نہیں پہنچیں گے, ہم نے آگے نہیں بڑھنا ہے. اور ابھی تک ہم اس لکیر پہ نہیں پہنچے ہیں.
صحیح.
کیونکہ یہ اسٹاف لیبر جو اگریمنٹ ہوا ہے,
جا,
اس کو وہ ایک کنڈیشنل ہے کہ جی آپ یہ پرائر ایکشنز جو ہیں, ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بھی ہے, یوٹیلیٹیز کے پرائسز کے حوالے سے بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر کہ جو آپ کے پارٹنرز ہیں انٹرنیشنل جس سے آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں ابھی, تو ان سے آپ لکھا کے لے کر آئیں کہ جب ان کا پیسہ ڈیو ہوگا آئی ایم ایف کے پروگرام کے پیریڈ میں تو یہ رول اوور ہو جائے گا. یہ اٹ از ٹو انسلٹنگ فار اینی نیشن ٹو گو تھرو دس. اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا تھا, کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اس وقت وہ تعلقات میجر شیئر ہولڈر آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ہیں جو ماضی میں تھے.
ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب, اب جب کہ یہ انیشیٹو لیے جا رہے ہیں,
ہوتی ہے اور ہو رہی ہے, یہ
ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب جیسے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی بھی اس حد کے اوپر یہ نہیں گئے ہیں جو مقرر کی گئی ہے, لیکن اب یہ جو میئرز ہیں جیسے ہمیں تو نہیں اندازہ ہوتا کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھایا گیا, اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ بڑھا دیے ہیں تاکہ جو پیسے کا ہے وہ بینکس کے پاس ریزروائرس کے اندر موجود رہے, لوگ اس کے اندر پیسہ رکھیں, لیکن سرکولیشن کم ہوگی. سو اینی وے, اب یہ انیشیٹو کے بعد कोई तवक्को है? जैसे मैंने उस रेवेन्यू मिनिस्टर का स्टेटमेंट कोट किया है कि 3 साल के अंदर नमू बेहतर हो सकती है, और वो ये कहते हैं कि हमने तो 8 महीने में बाकी जो खसारा है वो भी 8 अरब, वो कहते हैं कि हमने कम किया है, 30% कम किया है। सो कुछ ऐसे इनिशिएटिव हैं जो ये बताएं कि ये जो अब डिक्लाइन या जो स्लाइड डाउन है ये थम जाएगा कहीं पर?
देखिए, एक्सचेंज रेट को डिप्रिशिएट करके करके एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ता है हम दूसरे मुल्कों में। ये किताबी बातें होती हैं, किताबों तक महदूद अच्छी चीज है। ये उन मुल्कों में होता है फायदा एक्सचेंज रेट की डिवेल्युएशन का, कि जहां पर उनके इंडस्ट्रीज में, खासकर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में, इंपोर्टेड इनपुट की शरह बहुत कम होती है। जिस मुल्क में 60% से ज्यादा उसकी इंडस्ट्रीज की रॉ मटेरियल्स है, एनर्जी है, ये इंपोर्टेड है, तो जब आप करेंसी को डिवैल्यू करेंगे इन तमाम इंपोर्टेड आइटम की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो आप तो कॉम्पिटिटिवनेस को लूज करेंगे, ना कि आप गेन करेंगे।
सही।
तो ये एक स्टैंडर्ड सी चीज है, लेकिन चूंकि IMF के लोग टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि इस वक्त के जो वजीर खजाना हैं और गवर्नर स्टेट बैंक हैं, दोनों का इस मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेहमान बनकर आते हैं, उतने ही दिन मुल्क में रहते हैं जब तक ये वजीर होंगे या मुशीर होंगे, जिस दिन खत्म होगा ब्रीफ केस लेंगे चल देंगे। तो इनको यहाँ के ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता है, वो किताबी बातों से निकल ही नहीं पाते।
सो ये ब्रीफ केस इंतजामिया मसले का हल नहीं है आपके ख्याल में?
रेट को बढ़ा दिया,
आपके ख्याल में ये ब्रीफ केस इंतजामिया मसले का हल नहीं दे सकते?
क्यों बढ़ाया गया? कि जी उससे इन्फ्लेशन कम होंगे। अब कोई उनको कहे कि जी आप मुझे बताओ कि डिस्काउंट रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कैसे कम होता है, आप मुझे वो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बता दें, ये आपको बता नहीं सकते।
सही। सो आपके ख्याल में ये जो
जब आप अजनबी लोगों के हवाले मीशत को करेंगे तो ये उसका असर होगा।
सो आपके ख्याल में ब्रीफ केस इंतजामिया मसले का हल नहीं दे सकती है?
बिल्कुल 200%। आपने लफ्ज बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, मैं इंशाल्लाह TV के प्रोग्राम में भी इसको इस्तेमाल करूंगा, ब्रीफ केस इंतजामिया।
ठीक है। सो आपके ख्याल में इसके उनके पास इस मसले का हल नहीं है। सो आखिरी बात, ये जो डॉलर की प्राइस के ऊपर, चूंकि ये थोड़ा सा पब्लिक सेंटीमेंट
की इकोनॉमी अगर बेहतरी आएगी ना, तो ये जो तेल सऊदी अरब ने जो डिफर्ड पेमेंट पे हमें दिया है, जिसके ऐलान कर दिया है उन्होंने, $275 मिलियन तेल पर मंथ जो है वो हमें डिफर्ड पेमेंट पे देंगे, इसने बहुत बड़ा बहुत फायदा पहुंचाना है पाकिस्तान के मीशत को। IMF के प्रोग्राम के जो तलखी है, जो इसके नेगेटिव्स हैं, उसको ये दूर करने में बहुत मददगार साबित होगा
ये तेल, ये जो डेफर्ड पेमेंट। आपने फिर उसी ब्रीफ केस इंतजामिया पे, लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, एक बल्कि दो क्वेश्चन है उसका जाविया। एक तो जो डॉलर की कीमत है, क्योंकि मार्केट में इसके ऊपर बहुत खेला जाता है, अपोजिशन भी उसके ऊपर बात करी है कि ये नाइलियों के सबब ये कीमत चढ़ गई है, वहाँ से जवाब आता है कि जी पिछली गवर्नमेंट ने उसको आर्टिफिशली पैक किया हुआ था और वो इमोरल था और उसका नुकसान आज हो रहा है। सो ये डॉलर की कीमत में क्यों
के लोग बैठे हुए हैं, ना उनको से चीजों की समझ है, ना इधर चीजों के लोगों की समझ है, कि ये वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल, ये हकीकत है कि इसहाक डार साहब ने उसको रोक के रखा हुआ था, और उसको रोकने के कॉस्ट हमने पे किए हैं। कि देखिए रोका किस तरीके से जाता है, कि ये मार्केट में ही डिटरमिन हो रहा होता है एक्सचेंज रेट। जिस तरीके से आप कोई भी चीज मार्केट में खरीदने के लिए जाते हैं और उसके डिमांड सप्लाई के बेसिस पे उस आइटम की कीमत डिटरमिन होती है, तो बिल्कुल इसी तरीके से डॉलर के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे उसकी मार्केट पे डिटरमिन हो रही होती कीमत। तो जब डॉलर की कीमत बढ़ रही होती थी डिमांड बढ़ने की वजह से, तो रुपए की कीमत घट रही होती थी, लेकिन दार साहब इसके फेवर में नहीं थे घटने के, तो वो क्या करते थे, डिमांड को पूरा करने के लिए स्टेट बैंक मार्केट में पैसे को डाल देता था, ताकि सप्लाई बेहतर हो जाए और डिमांड और सप्लाई बेहतर हो जाए, बराबर हो जाए, ताकि रुपया उसी जगह पर खड़ा रहे। तो हम स्टेट बैंक अपने रिजर्व से पैसा मार्केट में फेंकता रहा ताकि सप्लाई और डिमांड बराबर रहे। तो रोक के नहीं रखा गया था, रोका इस तरीके से था कि स्टेट बैंक अपने रिजर्व को लूज करता चला जा रहा था, जो नहीं करना चाहिए था। अब जो हो रहा है वो एक तरीके से ये IMF की पॉलिसीज का हिस्सा है।
ठीक है,
ये कहां पर जाके रुकेगा नोबडी नोज। फिर ये कि हमारी मार्केट जो है, हम जैसे तरक्की पजीर मुल्क में $5-10 मिलियन मार्केट में ज्यादा आ जाए कम आ जाए, मार्केट हिल जाती है 5-10 मिलियन में। ये कोई एडवांस इकोनॉमी थोड़ी है कि जहां पर मार्केट को हिलाने के लिए आपको सेवरल हंड्रेड बिलियन आपको फेंकना पड़ेगा मार्केट में, तो फिर मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है,
इवन कुछ मिलियन डॉलर से भी जो है ठहराव।
ये तो आप लोगों के हाथों में खेलने वाले मुतलक के बराबर चीज ही है।
सही सही सही। आखिरी सवाल अगेन वो ब्रीफ केस इंतजामिया के रेफरेंस में, हम भी उसके ऊपर एक पूरी रिपोर्ट डेवलप करेंगे, मसला लॉयलिटी का होता है उनका या कैपेसिटी और कैपेबिलिटी का?
देखिए जो बाहर से लोग आते हैं ना, ये एक फितरी अमल है कि जिस इदारे में आप काम कर रहे होते हैं, एक आपकी ट्रेनिंग होती है, बरसों बरस की ट्रेनिंग होती है, आप उस माइंड सेट में चले जाते हैं, और जब उससे निकल कर आप मुल्क में भी नहीं रहते हैं, तो जब आप यहाँ उतरते हैं हेलीकॉप्टर से, तो आपका माइंड सेट तो वही है कि जिस अदारे में आपने इतना अरसा काम किया हुआ है, ट्रेनिंग उन्हीं की होती है, कि सोच उसी चीज का होता है, तो जब वो आते हैं तो ला मोहला सोच वही गालिब उन पे होता है, और चूंकि वो यहाँ रहते नहीं है तो उनको ग्राउंड रियलिटी का भी पता नहीं होता है, तो इसलिए देखने में ये लग रहा है कि वही पॉलिसी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की है वो इंप्लीमेंट हो रही होती है।
सही, सही।
इसी तरीके से देखें जो हमारे गवर्नर हैं, मैं कल तक एक आईएमएफ का स्टाफ हूं, मैं कल तक एक ब्लू कोट पहन के बैठा हुआ था और मैं आईएमएफ कर रहा था इजिप्ट में बैठा हुआ, वहां से मुझे लाया जाता है पाकिस्तान में, ग्रीन कोट मेरा कोट चेंज कर दिया जाता है। क्या आप समझते हैं कि ये इंसान के फितरत में है कि मैं ओवर टाइम एक दिन में बदल जाऊं, मेरा जहन बदल जाए? ऐसा नहीं है, नामुमकिन है। ये यो जो मेरे आगे सामने आप बैठे हुए हैं वो मेरे कलीग है, जो कल मेरे कलीग थे,
सही,
अब मैं इधर आ गया हूं, तो एक आप खुद सोचें, अपने दिल पर हाथ रखें कि क्या वो कोई मुज़ाकरात होगी वहां पर? वो तो वही लोग उधर बैठे हुए, वही लोग इधर बैठे हुए हैं।
So, यानी पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नेगोशिएट करने के लिए लोग वहां मौजूद नहीं होते हैं?
बिल्कुल नहीं थे, बल्कि हमारा फाइनेंस सेक्रेटरी जो था वो बीच में उसने काफी स्टैंड लेने की कोशिश की, उसको भी हटा दिया गया मीटिंग से, क्या भी चले जाओ, तो कोई था ही नहीं पाकिस्तान की तरफ से, कोई पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तानी जो है वो मीटिंग में नहीं था।
जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बेहद शुक्रिया। और मईशत के ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी है, मुजम्मल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इन्वेस्ट एंड फाइनेंस सिक्योरिटीज़ के, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। और मुजम्मल साहब बहुत शुक्रिया, मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि काफ़ी कुछ देर पहले आपको लिया था, लेकिन चूंकि वन ऑन वन फॉर्मेट था इस सेगमेंट का, तो आपको सहमत हुई, इसके लिए माजरत भी। जहाँ से हमने बात ख़त्म की है पहले, उसी से ज़रा शुरू करते हैं। डॉक्टर इशफाक हसन साहब को आप सुन रहे होंगे, वो ये एक टर्म जो इस्तेमाल हुई कि जी ब्रीफ केस इंतजामिया, बाहर से लोग जो आते हैं फिर वो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं होते और वो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको नेगोशिएट नहीं कर सकते, ये मजबूरी तो अपनी जगह के इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना है, सो उनकी बातें तो बहुत सारी माननी पड़ेंगी जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, लेकिन सिल ब्रीफ केस इंतजामिया क्या वाकईतन पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं दे सकती या पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नहीं सर्व कर सकती? मसला यही है।
देखें, इट्स टू हार्ड टू से दिस, और मैं इस चीज से बिलीव नहीं करता। अगर हम नेशनैलिटी की बेसिस से या वो अगर सिर्फ इस बेसिस से कि कोई शख्स मुल्क से बाहर काम कर रहा है तो हम उस पर इल्ज़ाम लगा दें कि वो जो है किसी और की ड्यूटी करने इधर आया है और वो आपके मफादात का तहफ़ नहीं करेगा, तो दिस इज हाईली अनफेयर। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में अभी उनके जो गवर्नर लगने के लिए जो है चांसेस हैं, जो साबिक इंडिया के स्टेट बैंक गवर्नर थे रघुनाथ, वो शायद लग जाए, और रघुनाथ जो है पहले आईएमएफ में भी काम कर चुके हैं, और फिर वो जो है इंडिया में भी जो है ना गवर्नर स्टेट बैंक लगे। फिर इसी तरीके से अगर आप देखें लंदन के जो मेयर है वो पाकिस्तानी लगे हुए हैं, फिर यूके की एक और एग्जांपल ले लेंगे, उनके वजीर खारजा हैं वो भी एक पाकिस्तानी नजाद है। तो पूरी दुनिया में जहाँ पे टैलेंट होता है, जिसको काम आता है, उसको लगाना या रखना कोई बुरी बात नहीं है, और ये हम पाकिस्तानी कुछ इस मामले में ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। हर इदारे के चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, आपका वजीर खजाना लगे उसके ऊपर उसकी ओवरसाइट होनी चाहिए, वजीर आजम के थ्रू या कुछ और इदारे जो हैं, गवर्नर स्टेट बैंक लगे उसके ऊपर उसको चेक्स एंड बैलेंसेस इंटरनली भी मिलते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी बोर्ड होता है, फिर उसके ऊपर उसका वजीर खजाना होता है, तो ऐसी बात नहीं है। और डायरेक्शन जो होती है वो गवर्नमेंट की ही होती है, और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने खुद एक बात बोली कि सितंबर से हम आईएमएफ से नेगोशिएट कर रहे थे, और IMF ने हमें सितंबर में ही प्रायर एक्शन दे दी थी और हम उसको फॉलो कर रहे थे, तो यानी कि पुराने वजीर खजाना भी तो उसको फॉलो कर रहे थे। जब अगर फॉलो कर रहे थे तो फिर पुराने वजीर खजाना भी उनके आदमी हो गए, तो ये गलत चीज है। अब पाकिस्तानियों को क्यों हमेशा बाहर से लोग लाने पड़ते हैं, इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए। एक तो ये कि हमारे जो यहाँ पे इंटरनली लोग मुल्क में मौजूद हैं उनका जो है इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत कम है। अब कुछ पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं, काबिल से जिंदगी गुजार रही है, बड़े बड़े इदारों में काम किए हैं, अगर उनका उनको जो है सर्विस का मौका मिल रहा है तो वो उसकी वजह से हमें बाहर जाना पड़ रहा है। अगर मुल्क में बेहतरीन टैलेंट होता तो हम ले लेते। अब देखें हमारे पिछले वजीर खजाना ने बहुत मेहनत की लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान में काम करते रहे, जिंदगी भर एंग्रो में काम किया, फिर सियासत में आए, तो उनका रिलेटिव जो एक्सपीरियंस था वो ये एक्सपोजर था वो वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी मतलब बेहतरीन काम किया। और मैं समझता हूँ हफीज शेख का 90% काम वो करके गया।
हफीज
शेख ने तो आके आखिरी एक डिवेल्यूएशन की और अभी मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट आई है, बाकी 90% आज जो भी डॉक्टर साहब ने डेफर ऑयल पेमेंट की बात की वो भी असद उमर की नेगोशिएट की हुई है।
सही।
तो ये वर्क था लेकिन अब फाइनली जो है जो है उसमें चेंजेस आई। तो ये जो ब्रीफ केस इंतजामिया कह देना इट्स टू इजी, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने डिलीवर भी कर दिया।
तो अच्छा मुजम्मिल साहब ये बताइएगा, आप डेफर पेमेंट की बात की है, इससे कुछ तवक्को है कि ये जो एक्सचेंज रेट्स हैं ये कुछ स्टेबल हो जाएं, रुपया कुछ उसके अंदर इस्तेहकाम आए और जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्टीमेटली कुछ नमू मुआशी नमू में भी बेहतरी आ सकती है 2-3 साल के बाद, इसके क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं?
जैसे एट द एंड ऑफ द डे ये भी कर्जा ही है ना, ये कोई कर्जा मतलब अगर
3 साल बाद पेमेंट करनी है
और आपने 3 साल बाद पेमेंट करनी है, हिस्टोरिकली कहते हैं प्रूफ नहीं है कि सऊदी अरब ने पहली वाली कभी ली नहीं, तो मे भी हो सकता है सऊदी अरब के कोई मफादात ऐसे आ जाएंगे पाकिस्तान को वो माफ कर दे ये पेमेंट, लेकिन ये एट द एंड ऑफ द डे कर्जा ही है ना। फिलहाल जो हमारे ऊपर जो माउंटिंग प्रेशर है वो डेट पेमेंट का और जारी खसारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट का है, उससे जिस तरीके से हमारे जो खजाने खाली होते हैं तो खजाने खाली होकर एक पैनिक डॉलर मार्केट में इधर उधर आता है, तो वो एक सिर्फ ये पैनिक को रिड्यूस करेगा और गवर्नमेंट को टाइम मिल जाएगा अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का और इस पीरियड में अपनी एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करने का या इंपोर्ट कंप्रेशन करने का। बाकी इसके अलावा इसको ये कर्जे के तौर पे लें और अपनी लायबिलिटी के तौर पे लें तो बेहतर है।
सही। अब ये बताइएगा कि बिलफर्ज एक्सचेंज रेट में जो कमी की गई या रुपया नीचे गिरा, कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी, आप भी जिसके ऊपर बात करें, फिर दिफाई अखराजात हैं उसमें इजाफा हुआ है, सूद की अदायगियाँ जो हैं उनमें इजाफा हुआ, रिकॉर्ड सतह पे कहते हैं कि है माली खसारा पाकिस्तान का 19 खरब रुपए का। सो ये जो मुआशी ओवरऑल एक मजमूई मुआशी तस्वीर है या पिक्चर है आपके सामने, उसको वर्स बना रहा है पाकिस्तान के लिए, या ये समझा जाए कि जितना भी इसके अंदर वो स्लाइड डाउन आना था वो आ चुका है, यहाँ से कोई बेहतरी के आसार पैदा होंगे आगे?
देखिए मैं कल एक इदारिये पे काम कर रहा था जो इंशाल्लाह एक अखबार में छपेगा 2-3 दिन में
जी,
उसमें मैंने उसका जो मेरा वो था सब्जेक्ट था वो ये था कि आया वी डिजर्व IMF प्रोग्राम और नॉट
जी।
अब देखें ये हम 22वें प्रोग्राम में IMF में दाखिल हो रहे हैं और एक तरीके से ये कि हम जब बीमार हो रहे हैं एक ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं और वो 22 दफा हम उसके पास गए वो लेकिन हमारा इलाज नहीं कर सका। अब वो इलाज करने वाला या तो सही नहीं है या हमारी बीमारी लाइलाज है, ठीक है ना, इन दो में से एक चीज। तो मैंने उसका एक बड़ा डिटेल तजिया दिया, मेरे हिसाब से जो IMF जो इलाज हमें प्रिस्क्राइब करता है ना वो बहुत एक्सपेंसिव इलाज प्रिस्क्राइब करता है, और डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है कि वो जो है IMF जो है पाकिस्तान के अंदरूनी या ऑन द ग्राउंड हालात को नहीं समझता। अच्छा लेकिन उसका इल्जाम मौरख कर देना कि हमारा वजीर खजाना और उनका गवर्नर स्टेट बैंक जो हमारा लग गया है वो IMF का आदमी है, एक्चुअली ये भी एट द एंड ऑफ द डे मुलाजिम है, जो इनका बोर्ड है या जो ऊपर थिंक टैंक है पॉलिसीज वहां से आती है और वो बनाते हैं, तो ये कह देना कि वजीर खजाना हमारा उनका आदमी है नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा अब हमारी मजबूरी है हमें कर्जा लेना पड़ा है, लेकिन जो मैं जिस तस्वीर में पहुंचा हूँ IMF जो है ना हमें बीमारी का इलाज नहीं देता, हमें जो है वो क्या करता है कि सर्दी लग रही है तो कंबल ले लो, ठीक है ना, ये जल्दी जाए कंबल खरीद लें बस आप जाके, आप उसको सर्दी मतलब उसके लिए परमानेंट इंतजाम नहीं करेगा या किस आपकी घर अच्छा बनना चाहिए मजबूत बनना चाहिए इस तरह की चीजें नहीं करवाएगा। तो मेरा अपना ख्याल है पाकिस्तान के मसले अखराजात ज्यादा नहीं है, पाकिस्तान के मसले दो हैं। एक ये कि सबसे पहले प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, पिछले हमने 20-30 सालों में अपने मुल्क की जो ग्रोथ रेट है या ग्रोथ है या जो वसाइल है उससे हमने ग्रोथ नहीं प्रोड्यूस की। हमारी एग्रीकल्चर जो मेन बेसिक ग्रोथ इंजन था उसको हमने पिछले 10 साल के मुकाबले में आज हम 20% कम हो गए, हमारी पैदावार कम हो गई है। यानी हम 15 मिलियन बेल कॉटन प्रोड्यूस करते थे, हम 10-11 पे आ गए, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हमारी बरामदाद असर हुई। अच्छा, जब वो हुई तो जब आपकी मुल्क में ग्रोथ असरअंदाज होती है तो आपके मुल्क में लोगों का रोजगार वैसा नहीं होता, टैक्सेस आपको जमा करने की जो कुवत होती है आपकी वैसी नहीं होती, तो वो आपका मसला ग्रोथ और टैक्सेस है। IMF क्या करता है, उल्टा आके आपकी ग्रोथ को सब्ड्यूट करता है। सबसे पहले आएगा कहेगा शरह सूद को डबल कर दो। अच्छा, शरह सूद में सबसे बड़ा नुकसान आप आ रहे हैं हमारा खसारा कम करने के लिए, तो सबसे ज्यादा खसारा हुकूमत का ही बढ़ता है अगर शरह सूद बढ़ती है। अभी ये जो 6% शरह सूद बढ़ा है, पाकिस्तान का लगभग 1200 अरब रुपए इजाफी सूद की अदायगी जो है हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे तो गवर्नमेंट का खसारा बढ़ जाएगा, तो फिर IMF प्रेशर डालेगा कि जी आप अपनी मालियाती और टैक्स लगाएं अपने खसारा को पूरा करने के लिए, नंबर एक। नंबर दो जो है, आप IMF दूसरी चीज कहता है डीवैल्यूएशन कर दो। अच्छा, जब डीवैल्यूएशन होगी तो उससे जो है महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो फिर शरह सूद बढ़ाना पड़ जाएगा। तो फिर अच्छा, जब शरह सूद बढ़ जाएगा तो जितना मकामी तौर पे जो पैसा लोग जमा कराते हैं बैंकों में, वो बजाय कारोबार को लेंडिंग होने की, हुकूमत उसको सारा का सारा उठा लेगी, तो आपकी जो शरह नमू है वो बिल्कुल बैठ जाएगी। तो IMF की प्रिस्क्रिप्शन जो है ना बहुत एक्सपेंसिव है हमारे लिए, इसीलिए हम 22 प्रोग्राम अब तक कर चुके हुए। इन 22 प्रोग्राम में सिर्फ एक हमने प्रोग्राम पूरा किया था और बाकी हमें जो है बीच में छोड़ना पड़ गया, क्योंकि हमारी हुकूमतों से नहीं हो पाता, वो बहुत मुश्किल काम है। अभी आपने खुद डॉक्टर साहब से भी सुना कि ये बीच में 2 दफा इमरान खान भी घबरा गए कि भाई IMF तो बोला बस करो, कितना करवाना है आप प्रोग्राम दो, तो वो नहीं दे सके। तो इनके साथ इनकी शराइत पे चलना जो है नामुमकिन है, वो हमारे मुल्क को सूट ही नहीं कर रही जो वो दवा दे रहे हैं। तो ये एक बड़े काबिले गौर चीज है। अब हमें जरूरत की डिफॉल्ट नहीं करना था, लेकिन हमें इस दफा अपने मसाइल के हल को IMF जो हमें डायरेक्शन दे रहा है उसके अलावा भी जो है ना सोच कर इसको परमानेंट हल करना पड़ेगा, वरना हम फिर 3-6 साल बाद IMF के प्रोग्राम ये दस्तक दे देंगे।
बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल इस्लाम साहब, आपने भी ज्वाइन किया हमारे साथ, आप मौजूद रहे, आपका बेहद शुक्रिया। और सामिन, एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं भारत के इंतखाबात के ऊपर।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम में जहाँ रंग, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर है हमारे साथ फायजा बुखारी। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे भारत के इंतखाबात के ऊपर, और बहुत तेज़ी से वोटों की गिनती जारी है, और ऐसे में जब यह गिनती का अमल जारी है, हिज्ब इख्तलाफ़ की जो जमातें हैं वो ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों उनकी कारकर्दगी के ऊपर जो है वो तहफ़ुज़ात ज़ाहिर कर रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि वहाँ पर बहुत शक व शुबात हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। दूसरी जानब जो जायज़ा रिपोर्टें हैं वो ये बता रही हैं कि इस वक्त जो हुक्मरान जमातें BJP एक बार फिर वो फतह हासिल करती हुई नज़र आती है। दोनों सूरत डेवलपमेंट्स के ऊपर राय लेते हैं अपने पैनलिस्ट की। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजयकार प्रताप सोमवानशी साहब ने, हमारे साथ हैं नीलफर सोर वर्दी साहब, एनालिस्ट हैं, तजयकार हैं, राइटर हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया और खैर मकदम। प्रताप सोमवानशी साहब, ये इनिशियल मराहल के अंदर भी ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर बात हुई थी, हालांकि बहुत सारी दुनिया में भारत का जो इंतखाबी निज़ाम है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, बैलेटिंग है, इसको तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इंटरनली बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। सो ये काबिल ज़िक्र है ये बात, और इन सवालात में जान है या इनको एड्रेस कर लिया जाएगा, और जो भी प्रेडिक्शंस आ रही हैं, जो भी पोल्स आ रही हैं, अगर उसी के मुताबिक नतीजे आते हैं तो उनको तस्लीम ही करना पड़ेगा।
देखिए, जाहिर तौर पे क्या है कि 2004 में BJP जो अभी रूलिंग पार्टी है, जब वो अपोजिशन में थी तो उसने सवाल उठाया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, उसके एक स्पोक्स पर्सन है, आज उन्होंने उसके खिलाफ किताब लिखी थी। तब कहा जाता था कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं और वो टेम्परिंग करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जो BJP के बड़े नेता हैं, उन्होंने EVM के खिलाफ बात कही। अब जब ये अपोजिशन में है, ये सरकार में है, जो अपोजिशन में है वो इस बात को कह रहा है. मुझे लगता है ये कम्प्लीटली ये गलत बात है, इसको बिल्कुल डिस्कार्ड करना चाहिए. उसके लिए मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों करना चाहिए. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार कह चुका है, चैलेंज करता है, ओपन चैलेंज एनी वन. कोई जरूरत नहीं कि आप कोई नेता हो, पॉलिटिशियन हो, कोई रसूखदार व्यक्ति हो, टेक्नोक्रेट हो, कह रहा कोई भी आदमी जो इसकी टेम्परिंग प्रूव कर दे वो हमको एप्लीकेशन दे, हम उसे अलाउ करेंगे और वो आके यहाँ प्रूव करें हमारे सामने पब्लिक डोमेन में.
सही.
तीन बार ऐसा हुआ तो कोई आदमी उसमें तो जाता नहीं. अब इसके बाद क्या होता है कि जब एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल में ऐसा कुछ आ रहा है कि मोदी गवर्नमेंट वापस आएगी, तब ये अपोजिशन का सवाल है, ये सवाल उठा रहे हैं. अभी कुछ दिनों पहले तीन सूबों के इलेक्शन में बीजेपी बुरी तरह हार गई, तब इन्होंने किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, कोई बात नहीं की.
सही. तो ये अब जरा उस दूसरे एंगल पे आइएगा कि ये जो पोल्स आ रही हैं, हिस्ट्री क्या रही है, कमोबेश उसके मुताबिक ही नताए जाते हैं?
नहीं देखिए, उसमें वेरिएशन है, करीब 90 सीट्स का वेरिएशन है एग्जिट पोल में ही. एग्जिट पोल यहाँ बहुत गलत सही भी होता रहा है. लास्ट हम एक सूबा है छत्तीसगढ़, जहाँ की वो बताया, छत्तीसगढ़ में बताया गया था कि वो बीजेपी आ रही है, वहाँ बीजेपी नहीं आई. बाकी स्टेट्स में आया, राजस्थान में कि बहुत बड़ा चैलेंज है बीजेपी को, बहुत बुरी तरह हारेगी, बहुत बुरी तरह से नहीं हारी. तो ये आपको पता है कि एक खास सैंपल साइज पे लोगों के बातचीत करने के आधार पे, सवाल के आधार पे ये पूछे जाते हैं. तो ये वोटिंग ट्रेंड तो बताते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं बताते हैं. अब ये पॉलिटिकल मुद्दा है तो मतलब ट्रेंड है, इंडिया में बहुत दिन से हो रहा है. अब इसका सवाल ये है कि ये लोग जाहिर तौर पर अगर कल जैसा एग्जिट पोल कह रहे हैं वैसा आता है तो अपोजिशन में सवाल खड़ा करेंगे.
जी, इसमें सवाल आएंगे. तो नीलोफर सोहरावर्दी साहब, आप खासतौर पर इस दूसरे जावी पे बात कीजिएगा एग्जिट पोल्स के ऊपर, और क्या आपको बीजेपी और उसके इत्तेहादी, उसके जो अलाइज हैं, वो दोबारा हुकूमत बनाते हुए नजर आ रहे हैं?
जो मुझे जो जहां तक मेरा नजरिया है, अपना नजरिया है, मुमकिन है वो वापस आ जाए, इसके इम्कान ज्यादा है, लेकिन उतनी मेजोरिटी से नहीं आएंगे जितने पिछले इंतखाब यानी 2014 में आएंगे. इस वक्त उन्हें एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने की जरूरत पड़ सकती है. और जब आज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अपनी हुकूमत बना पाएगी, और यही इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है. क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, महीनों में धीरे धीरे से जो एक जिसको कहा जाता है एक मोदी वेव, लहर, ये मध्यम पड़ती हुई है, कम हो गई, ना के बराबर. और जो मीडिया का भी टोन है, जैसे शुरू में बहुत बड़ी हाइप रेस की थी कि हाँ भाई भाजपा यानी बीजेपी मोदी सरकार ही वापस आएगी, और बहुत कोशिश की है मोदी जी ने, अपनी ये हर तरह के मुद्दे उठाए हैं, कोई भी मुद्दे, अंदरूनी मामला, बाहरी मामला, पाकिस्तान को भी शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन ये सब बातें आम जनता जहां वोट देते वक्त उनके गले के नीचे नहीं उतरी है. तो ये है कि फिर आप ये भी देखिए ना, जो वोटर्स टर्न आउट, जाहिर है अच्छा खासा वोटर्स टर्न आउट हुआ है, लेकिन अगर 7% से भी ऊपर वोटर्स टर्न आउट हुआ है, इसका ये मतलब है कि 30% लोगों ने नहीं, 40% लोगों ने नहीं वोट किया 30 और 40 के बीच में. तो एक नजरिया ये भी है कि जो कमिटेड बीजेपी वर्कर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, किसी वजह से वो लोग रुक गए हैं, वो आगे नहीं निकले हैं वो डालने के लिए. जहाँ एग्जिट पोल्स का सवाल है, उसमें भी अलग अलग एजेंसीज के आप एग्जिट पोल्स देखिए, उसमें बहुत बड़ा गैप है, लोवेस्ट कुछ है, हाईएस्ट कुछ है, और इतना बड़ा गैप. ये भी थोड़ा सा मुझे इस पे शक होता है कि भाई अगर इतना बड़ा गैप है, कोई कह रहा है कि उनको इतनी ज्यादा सीट्स मिल जाएंगी, कोई कह रहा है बस इतनी ही मिलेंगी. एक दूसरी बात ये भी है कि हिंदुस्तान की आबादी इतनी ज्यादा है कि आप एक एक्यूरेट परसेंटेज ऑफ वोटर्स के ओपिनियंस आप नहीं ले सकते. आप जितनी भी कोशिश कीजिए कि अगर आपने सिर्फ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वोटर्स का भी ओपिनियन लिया, वो भी फिर भी किसी तरह से हिंदुस्तान के 1% पॉपुलेशन या वोटर्स को नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो वही बात है कि अगर आप हम एग्जिट पोल्स को यकीन कैसे करें, मतलब अगर ये सही आ भी जाते हैं वो तो कल पता लग जाएगा, लेकिन फिलहाल जो मेरे सामने जो तस्वीर आ रही है कि आपने कितने लोग, मेरा तो मेरे आस आजू बाजू हम जिनको भी जानते हैं किसी का ओपिनियन नहीं लिया गया एग्जिट पोल्स के नजरिए, तो लिया किसका गया है?
खैर वो तो सैम्पलिंग है सर्वेज के लिए, और जिस टाइप के भी सर्वेज होते हैं ऑफ कोर्स उसके अंदर जो पूरी पॉपुलेशन होता है उसका एक सैंपल बनाया जाता है। ज़रूरी नहीं कि अब जैसे 1.5 अरब का हिंदुस्तान है तो मेरा ख्याल है अगर सैंपल छोटा भी हो तो 1,000, 1,500, 2,000 से भी कम से कम एक रिफ्लेक्शन जो है वो मिल सकता है कि वहाँ पे।
हाँ, लेकिन फिर दूसरी नज़रिया कि इंडिया का इतना वैरायटी वेरीड पॉपुलेशन, रूरल एरिया अर्बन एरिया सबकी मुख्तलिफ है, फिर इतनी तरह से ये वोट्स जो डिवाइडेड होते हैं, एक तो एक रिलीजन का मुद्दा बनाया जाता है कि एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज, दूसरा ये जात का मुद्दा बनाया जाता है, फिर
तो सैंपल के अंदर वो सारे सेगमेंट्स होने चाहिए जो मुमकिन तौर पे उसके ऊपर या नतायज के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। सो वो सारे सेगमेंट्स जो हैं वो उस सैंपल का हिस्सा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नीलोफर सूर्यवर्दी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रताप सोनवंशी एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, आप हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। चंद सेकंड की एक ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं प्रोग्राम के अगले सेगमेंट पे।
उर्दू VOA के फेसबुक पेज पर अब न्यूज बुलेटिन भी। पीर से जुमा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8, 9, 10 और 11 बजे। हमारे फेसबुक पेज की ID है www.facebook.com/voaurdu। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए हमारे फेसबुक लाइव बुलेटिन।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है, प्रोग्राम है जहाँ रंग, मैं हूँ असद हसन और प्रोड्यूसर हैं फायज़ा बुखारी। और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर अनफॉर्चुनेट वाक़यात, माइनर्स के ख़िलाफ़ बड़े क्राइम जिसके अंदर इनका अगवा है, किडनैपिंग है, अगवा है, रेप है और फिर जान से मार देना है। फरिश्ता नामी मासूम बच्ची इस्लामाबाद में गुज़श्त रोज़ पहले अगवा हुई और उनके वालिद और उनकी फैमिली जो रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो वहाँ पे भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। पुलिस का नारवार रवैया जो है वो रिपोर्ट हो रहा है और फिर उनकी डेड बॉडी मिलती है और बड़ी तकलीफ दे ये सूरत हाल है। उसके ऊपर ये मामला इस वक्त बहरहाल एक सियासी रुख भी अगरचे पाकिस्तान के अंदर इख्तियार कर चुका है। एक जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया गया जो उसको कबूल कर लिया गया है। सवाल मगर ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ वही केसेस जो हैं वो उसके ऊपर जुडिशल कमीशन भी बन जाएंगे या रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी और पुलिस भी सस्पेंड हो जाएगी जो मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर आते हैं। ओवरऑल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स के लिए, असलाहत के लिए कि जो प्रोटेक्शन है बच्चों की, माइनर्स की और इस तरह के क्राइम्स की हौसला शिकनी के लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है। हम बार बार यही सवाल उठाते हैं, यही सवाल अपने पैनलिस्ट के सामने रखते हैं, लेकिन साथ साथ वालदैन की भी जिम्मेदारियाँ। कम उम्र बच्चे क्यों इस तरह से आसानी से जो भी प्रेडेटर्स हैं उनके हाथों में लग जाते हैं? सो सोसाइटी के अंदर एक बड़ी अवेयरनेस के लिए क्या करने की ज़रूरत है? हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए एडवोकेट गुलजाना, लॉयर हैं, राइट एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ हैं फरजाना बारी साहबा, बड़ा नाम है इंसानी हकूक में और ख़ास तौर पे जेंडर जो बैलेंसेस हैं और उनकी उनकी रेफरेंस में उनकी आवाज़ बनती हैं फरजाना, और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर आपको वो नज़र आती हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुलजाना, आज आप जो विक्टिम फैमिली है उनके घर पे भी गई हैं, इस वक्त आपने खुद अदरवाइज़ भी मॉनिटर किया होगा, तहकीकात की समत क्या है, डायरेक्शन क्या है, विक्टिम फैमिली कितनी उनसे मुतमिन है, लूप होल्स कहाँ पर हैं?
हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इस फैमिली का बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि ये मेहमद एजेंसी की एक बहुत गरीब घराना है ये, और तकरीबन ये 12 बहन भाई हैं।
सही।
हेलो
जी, जी सुनिए।
जी जी जी, ये 12 बहन भाई हैं जिनमें से आप देखिए कि एक तो ये है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला हमारा आबादी का भी है, इतने ज्यादा माशाल्लाह आपके बच्चे होंगे तो वो माँ बाप को भी इतना फिक्र नहीं होता कि वो कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं।
सही।
तो ये बच्ची भी उसी चीज का शिकार हुई है कि माँ बाप की नेग्लिजेंस थी, और उसके बाद जिस दिन ये गायब हुई है अपने घर से तो उसके घर वाले जैसे पुलिस स्टेशन गए हैं मुतलका, शहजाद और शहजाद टाउन लगता है थाना, वहाँ जाते रहे हैं तो घर गरीब थे, इस वजह से उन लोगों ने इनके साथ मारवा सलूक किया कि फरिश्ते को फरिश्ते ही ले गए होंगे, किसी के साथ भाग गई होगी।
ये क्यों है ऐसे रवैये, क्यों है ये प्रोफेशनलिज्म क्यों नहीं है? और पुलिस सबसे ज्यादा लान तान और लानत मलामत होती है इस शोबे के ऊपर, इसके बावजूद वो कोई सुधरने का ना वो नाम लेते हैं ना कोई ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आती हैं, और खासतौर पे ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है जिनका तो नारा और दावा यही था पुलिस रिफॉर्म्स का, ये क्या कर पाए हैं अभी तक?
देखिए इन्होंने जो पीटीआई की गवर्नमेंट है अगर हम देखें, इन्होंने केपीके में तो काफी रिफॉर्म्स किए हैं, ठीक है, उसके अलावा सिंध पुलिस हो गई, पंजाब पुलिस हो गई, इनमें तो अभी तक काली मिर्च मौजूद है, ये राशि बन चुके हैं, रिश्वत लिए बगैर कोई काम नहीं करते, और गरीब को तो जाहिर पाकिस्तान में जो मैं समझती हूँ गरीब को तो कोई पूछता ही नहीं है।
So फिर
बहरहाल अब देखिए मैं अब इसमें जो पनिशमेंट की बात है कि अब हम आ जाते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिहाज से, पाकिस्तान में जो भी कवानीन है इसके चाइल्ड प्रोटेक्शन के, देखिए पहले हम लोग काफी अरसा पाकिस्तान जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल के हम अंडर रहे हैं, इनका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एक इन्फ्लुएंस था कि जी कैपिटल जो पनिशमेंट्स हैं वो नहीं होनी चाहिए, मतलब जो ये डेथ पेनल्टीज हैं इनको नहीं मतलब अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हम उस इन्फ्लुएंस से बाहर तो आ चुके हैं। बट मैं ये समझती हूँ कि जैसे कुछ हमारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इराक है, ईरान है, इनमें जो बच्चों का खासतौर पर जो रेप वगैरह करते हैं, अगर हम इस तरह के लोगों को सरेआम जो मैं समझती हूँ सरेआम इनको फांसी दी जाए, तो उससे मुझे लगता है कि माशरे में माशरती ये जो बिगाड़ पैदा हो रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा बच्चों के मामले में। एक दफा हमें इस तरह की इस्लाहात,
इसके अगेंस्ट भी राय है, वो लोग कहते हैं कि जिन मुल्कों में ये होता रहता है इस तरह की सरेआम सजाएं देने के बावजूद वहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। फरजाना बारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप बताइएगा सिस्टमिक फेलियर्स कहाँ पे हैं, क्यों नहीं उनको फिक्स किया जा सकता? क्राइम देखें दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं, अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे बच्चे अगवा होते हैं, हम आयरोज स्टोर्स के अंदर मॉल्स के अंदर जाते हैं बच्चों के विक्टिमाइज भी होते हैं, लेकिन जिस चीज़ का भरोसा होता है ना आम आदमी को कि सिस्टम किसी के साथ नहीं खड़ा होगा, ख़ासतौर पर कातिल के साथ नहीं खड़ा होगा, विक्टिमाइजर के साथ नहीं खड़ा होगा, वो पैसे लेके मुकदमा ख़त्म या दफन नहीं कर देगा, उसको टेम्पर नहीं करेगा, ये चीज़ें क्यों नहीं फिक्स हो सकती हैं, क्यों नहीं हो रही है वहाँ पे?
देखिए फिक्स तो हो सकती है, लेकिन बदकिस्मती से पिछले 70 सालों में जो भी हमारा अहले इक्तदार रहे हैं, जो भी हुक्मरान तबका है, उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो इन चीजों को दुरुस्त करे, वो अपने जो रियासती अदारे हैं उनको आवाम की खिदमत के लिए तैयार करे, उनका कोई एहतसाब हो अगर वो आवाम के साथ इस तरह के जुर्म ज्यादा करने में रियासती अदारे जो है वो मुलव्वस हो, या उनका अपनी जो उनकी जिम्मेदारियां वो पूरी ना कर रहे हो, तो उसका एक अवामी मफाद के अंदर उनका एहतसाब किया जाए। तो ये इन सब चीजों में तो कंप्लीट एक गवर्नेंस का फेलियर है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा बिल्कुल गैर मुअसर हो चुका है, और गरीब के साथ तो बिल्कुल खड़ा नहीं होता, अगर खड़ा हो, अगर कोई काम करता हुआ आपको नजर आता है तो वो जालिम के साथ खड़ा है, अमीर तबके के लोगों के साथ खड़ा है। अक्सर हम यही देखते हैं कि अगर तो इस तरह का मामला हो कि जिसमें जालिम और मजलूम की बात हो, तो क्योंकि करप्शन इतनी ज्यादा है हमारे अदारों में,
क्योंकि जालिम ने पैसे देने ना, मजलूम से तो कुछ नहीं मिलना
जी, तो गरीब के लिए तो ये है कि उसकी तो कोई सुनवाई नहीं है, वही जिस तरह आपने इस केस में भी देख लिया कि वो मसलसल कई दिनों तक वो जाते रहे कि जी कोई हमारी FIR ही काट लें, और उनकी FIR भी नहीं काटी गई, और ये अगर मामला जल्दी वो जिस दिन उनको उन्होंने रिपोर्ट किया था बच्ची की गुमशुदगी का, अगर उसी दिन ही पुलिस थोड़ी मुतहरिक हो जाती और इन लोगों का को फॉलो करती तो हो सकता है कि हम इस बच्ची को फरिश्ता को बचा सकते हैं। लेकिन यही बात है कि जहाँ सिस्टम नाकाम है, और उससे फिर ये है कि इस तरह के रुझानात में फिर बहुत तेजी के साथ जो इजाफा होता है, जहाँ पे ये मुजरमाना दिविंदगी वाली सोच रखने वाले लोग हैं, जब उनके अंदर ये एहसास होता है कि जी हमें हमारा कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है, हम ये जुल्म करेंगे और हमें कोई पूछेगा नहीं, हम अपनी सजाओं से बच निकलेंगे,
खौफ नहीं है। सो अब ये जो प्राइम मिनिस्टर, अगर से हम मानते हैं कि हुकूमत को सबसे बड़े इस वक्त चैलेंजेस मौशी हैं, बुरी तरह से वो फंसे हुए हैं, तनकीद हो रही है, सियासी टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन ये जो गवर्नेंस है ना इसका ताल्लुक, इसमें तो एक्स्ट्रा शायद पैसे भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये गवर्नेंस के जो मॉडल्स हैं जिसके अंदर पुलिस एक बड़ा कंपोनेंट है, इसको फिक्स करने के लिए बनी गाला से ये गालबन 2-3 किलोमीटर के ऊपर ये एरिया होगा जहाँ पे ये वाकया पेश आ गया है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी 8-10-7-8 किलोमीटर के फासले के ऊपर होगा। सो क्या इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत उनको इस जानिब फौरी तवज्जो देने की जरूरत है?
देखिए, जरूरत तो बिल्कुल है। अगर पुलिस के महकमे को ही दुरुस्त कर ले तो मैं समझती हूँ लोगों के बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी के साथ कोई ज्यादती होती है तो वो सबसे पहले उनका ये होता है कि वो थाने का रुख करता है, क्योंकि उनका ख्याल है होता है कि रियासत जो है और वो उनको उसका उनका हक दिलाएगी, और इसके लिए लोग पुलिस में जाते हैं। लेकिन वहां पे फिर जिस तरह के आपके हालात है वो मैं समझती हूँ कि नागुफ्ता में है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि अगर हम पुलिस के महकमे को दुरुस्त कर लें तो बहुत सारे मसाइल लोगों के जो है वो जो हल हो सकते हैं। तो इस हुकूमत की तरजीहात में ये चीज होनी चाहिए। बातें तो पहली हुकूमतों में भी की हैं, पुलिस रिफॉर्म की बातें बहुत दफा हो चुकी हैं। 2002 में आपको पता है पुलिस रिफॉर्म का एक्ट भी आया था, मगर यह है कि हमें ऑन ग्राउंड जो है वो कोई तब्दीली नजर नहीं आती। पुलिस के अंदर भी आप देखें कि वो एक दूसरे को कवर अप करते हैं, अगर कोई ऑफिशियल है उसने ज्यादती की है तो उसका जो सीनियर होगा वो उसको कवर करने की कोशिश करेगा, वक्ती तौर पे मुअत्तल कर देते हैं ऐसे ऑफिशियल्स को, बाद में आप थोड़े ऐसे बाद देखेंगे कि वो ही बहाल हो जाते हैं, उनको कहीं और लगा दिया जाता है। तो जो अकाउंटेबिलिटी है विद इन द सिस्टम जो है पुलिस के अपने महकमे के अंदर वो भी ना होने के बराबर है। तो ये इसमें की दुरुस्तगी कोई ऐसा मैं समझती हूँ कि कोई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि क्या होना चाहिए, लेकिन मसला ये कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो हम इन अदारों को दुरुस्त कर सकते हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा इसके लिए वसाइल डालने की जरूरत है।
बिल्कुल, आपने रवैया बदलने, छोटी सी ट्रेनिंग्स हैं और फिर ऑफ कोर्स एक मॉनिटरिंग का बेहतर निज़ाम है, चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं, सजा और जजा का सिस्टम हो। तो बहुत शुक्रिया आपका फरजाना बारी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और एडवोकेट गुलजना हमारे साथ थी उनका भी बहुत शुक्रिया। और सामिन, आखिर में क्विकली चलेंगे प्रोग्राम जो स्पोर्ट्स है उस सेगमेंट की जानब, और बात हम करेंगे कि अब वर्ल्ड कप जिसको शुरू होने में सिर्फ 7 दिन बाकी है लॉन्च में, और 7-8 दिन बाद पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप का आगाज़ करेगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। पाकिस्तान की टीम में तीन तब्दीलियाँ हुई हैं। वहाब रियाज वापस आए हैं, आमिर जो हैं वो कन्फर्म हो गए मोहम्मद आमिर के, वो भी टीम में होंगे, और अब मोहम्मद आसिफ जो ट्रायल बेसिस पर इंग्लैंड गए थे कि अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो टीम का हिस्सा बनेंगे, वो भी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। इससे टीम के बैलेंस पर क्या फ़र्क पड़ा है, पाकिस्तान टीम के चांसेस कितने हैं, एटलीस्ट क्या वो टॉप 4 में सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर सकती है? वसीम बारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर पाकिस्तानी कैप्टन, फॉर्मर विकेट कीपर, और सलीम खालिक हमारे साथ हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं और क्रिकेट के ऊपर अपनी किताब भी लिख चुके हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। करंटली इन्हीं तब्दीलियों से शुरू कीजिएगा, कितनी प्रोडक्टिव हो सकती है ये तब्दीलियाँ, इससे टीम बैलेंस पर कोई फर्क पड़ा है?
ठीक है, नो डाउट आसिफ को जो लिया है वो तो मेरिट पे आए हैं और उन्होंने परफॉर्म किया, उसके पास जगह बनाई है। लेकिन जो वहाब रियाज और आमिर आए हैं उससे बड़ी हैरत जाहिर की जा रही है, क्योंकि वहाब रियाज आपको पता है 2 साल से पाकिस्तान के लिए कोई वनडे नहीं खेले थे, उसके अलावा जो मुमकिन प्लेयर थे उनमें भी वो शामिल नहीं थे, उनका कोई फिटनेस टेस्ट भी नहीं हुआ। अचानक से उनको ख्वाब में इंतजाम उलट ने आगे बताया कि आप टीम में आ रहे हो, फिर उनका ख्वाब सच साबित हो गया। तो आप देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। इसी तरह आमिर के बारे में कहा गया था, पहले को ड्रॉप किया कि परफॉर्मेंस देखेंगे उनकी, लेकिन एक मैच खेल सके वो, जिसमें भी बारिश हुई थी, उनको बॉलिंग का मौका नहीं मिला, उनको भी टीम में ले लिया गया है। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी अजीब नजर आ रही हैं कि अगर आमिर इतने अच्छे थे तो ड्रॉप क्यों किया था, और अगर अब लिया है तो किस बेस पे लिया है उनको?
सही, सही।
और इसी तरह वहाब रियाज अगर इतने अच्छे थे तो क्यों पहले उनको जो आपने 23 खिलाड़ियों में नहीं लिया था, तो फिर आपकी सिलेक्शन कैपेसिटी बहुत खराब है कि उसको आइडिया ही नहीं हुआ था। देखते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा पैनिक कर गए हैं ये सिलेक्टर्स जो है, पेसर्स की जो हमारी पिटाई हुई है इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में, तो वो बहुत घबरा गए हैं और उनको शायद ऐसा महसूस होता है कि अगर इन्हीं प्लेयर्स के साथ कंटिन्यू किया तो आगे जाके और मसाइल का सामना करना पड़ेगा, शायद इसीलिए घबरा के उन्होंने 2 ऐसी चेंजेस की हैं जो बड़ी डिबेटेबल हैं। लेकिन बात वही है कि जहाँ ये सब पिट रहे हैं ये सब दूसरे बॉलर भी पिटेंगे, कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ है, यहाँ इतने ही रन बनेंगे 300-350, यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करनी होगी।
यानी अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या, यानी या तो T20 वाली अप्रोच अडॉप्ट करनी है जिसमें बॉलर खुद को बस बचाते हुए नजर आए, और फील्ड प्लेसिंग जो है वो बेहतर हो, क्या करें पाकिस्तानी बॉलर? और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का बॉलिंग स्क्वाड जो हम देख रहे थे कि पिछले वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप में वो सबसे बुरी परफॉर्मेंस है स्क्वाड जिसकी है वो पाकिस्तानी बॉलिंग स्क्वाड की है, गलबन एक बांग्लादेश की टीम उसके नीचे है, और यानी 88 रन प्लस स्ट्राइक रेट है पर विकेट, यानी इतनी मार पड़ती है। सो ये चीज़ तो बहुत कहना चाहिए थ्रेटनिंग है। इसमें सिर्फ अजहर महमूद काफ़ी हैं इन दिनों में, या कोई थोड़ी सी और भी एक डोज चाहिए, जो जैसे वसीम अकरम हूँ या बड़े और प्लेयर्स हूँ, वो जाएं जरा लोग लड़कों को बताएं कि क्या करना है।
नहीं, अब तो आप किसी को भी उठा के ले आए, वो कुछ भी बताए, वो फर्क नहीं पड़ने वाला, टाइम खत्म हो गया, कुछ कर दिखाने का वक्त है। अगर महमूद की जहाँ तक बात है तो वो काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ हैं, लेकिन कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इतनी परफॉर्मेंस नहीं रही। पिछले अरसे पाकिस्तान का एक अच्छा बेनिफिट ये होता था कि फील्डिंग बेहतर होती थी, रन बचा लेते थे, कैचेस ले लेते थे, तो बॉलर गलतियां करते थे, कवर हो जाती थी। अब फील्डिंग साथ नहीं दे रही। इसका मिकी आर्थर ने ये जवाब दिया है कि कुछ नए लड़के टीम में शामिल हुए हैं जो इस कल्चर से वाकफियत नहीं रखते, जो हम लोगों ने एक ऐसा अपना स्टैंडर्ड सेट किया है उससे इतना वो फेमिलियर नहीं है, इसलिए मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये कोई ऐसा जवाब है नहीं। तो फील्डिंग साथ नहीं दे रही, इस वजह से चांसेस जो है वो नहीं लिए जा रहे, ग्राउंड फील्डिंग का मैार भी अच्छा नहीं है, तो पाकिस्तान टीम के मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए। और अजहर महमूद का काम इसी वक्त था कि वो संभालें, लेकिन वो संभाल नहीं पा रहे। हालांकि यही फहीम अशरफ जिनको अभी बाहर किया थे, जिन्होंने पहले इंग्लिश कंडीशन में बेहतर परफॉर्म किया था, यही इशादाब है इन्होंने की पहले, अभी तो खैर वो नहीं खेले, लेकिन इंग्लैंड में वो अच्छा परफॉर्म कर चुका है। लेकिन 2019 में अगर आप बॉलर की कारकर्दगी देखें तो किसी की एवरेज 119 है, किसी की 80 है, इवन शादाब के ऊपर हम बड़ा बेस करें, शादाब 50 प्लस है। तो अगर आप बैट्समैनों में देखें तो ये एवरेज अच्छी लगती है बॉलर।
शादाब की क्या एवरेज है? शादाब
शुरू में 50 प्लस है।
अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये देखें कि आमिर की 120 जी। हाँ, आमिर
हम इस तरह अगर ये चीज देख
जी मैंने कहा मोहम्मद आमिर की 130 के करीब है, 128, और अब वो टीम में है। सो उनका एक्सपीरियंस ना खेलने के बावजूद वो बहरहाल टीम का हिस्सा बने हैं, उनके लिए जिन्होंने कैंपेन चलाई वो उसमें कामयाब रहे हैं। अब जब वो टीम का हिस्सा हैं, सो कुछ एक्सपेक्टेशंस उनके साथ रखी जाए इन कंडीशंस के ऊपर।
देखिए, आमिर तो थ्रू आउट नाकाम जा रहे हैं, अब वो घर पर बैठ के क्या उनकी फॉर्म वापस आई होगी, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना पड़ेगा ये। लेकिन हम लोग पिछली फॉर्म पे ही चल रहे हैं कि जी पहले कभी 2 साल पहले चैंपियंस ट्रॉफी में उसने कोहली को आउट किया था, तो वही चीज लेकर आया गया। अगर इस तरह की चलना है तो शायद अफरीदी को भी ले आए, जावेद मियादाद को भी ले आए, वसीम अकरम को भी ले आए, क्योंकि पहले कर चुके, पहले ही क्रिकेट में हाल पे जाते हैं कि आजकल कैसी परफॉर्मेंस है, आजकल कैसी फॉर्म है, और बदकिस्मती से आजकल आमिर की जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिससे बहुत ज्यादा हमें तवक्कोआत वाबस्ता करनी चाहिए। और बॉलिंग अटैक हमारा बहुत ही ज्यादा डाउन है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि सेमीफाइनल में भी पहुंच पाएंगे।
सही, तो अच्छा, सेमीफाइनल के लिए वैसे बाकी भी जनरल कुछ कैलकुलेशंस भी हैं, 9 मैचेस खेलने हैं, सो 4 साइड्स ऐसी हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गई, श्रीलंका की टीमें थोड़ा स्ट्रगल कर रही हैं, अफगानिस्तान है, वेस्ट इंडीज़ हैं, अगर ये पाकिस्तान मैच जीत जाता है फिर बाकी जो 5 मैचेस हैं उनमें से 2 मैचेस भी पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी तो फिर उसके चांसेस जो हैं वो ब्राइट हो जाएंगे सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के। सो सेमीफाइनल के लिए तो बहुत सारे लोग ऑप्टिमिस्ट हैं कि जा सकती है, आपके ऑप्टिमिस्ट ना होने की वजह क्या है?
जिस तरह से आपने बताया उसमें तो फिर एक मैच जीतेंगे फाइनल में पहुंच जाएंगे।
बिल्कुल नहीं, सेमीफाइनल के बाद तो फिर नॉकआउट है जी, कुछ भी हो सकता है, सेमीफाइनल के बाद तो कोई टीम भी आ जाएगी।
लेकिन ये इतना आसान नहीं है, जो वर्ल्ड कप में कोई भी टीम है, चाहे वो अफगानिस्तान की भी टीम है, उसको भी आप इतना आसान ना
समझें,
बांग्लादेश की टीम है उसको भी आप आसान ना समझें, इसमें कोई भी टीम किसी को भी हरा सकती है। और 9 मैच जो ये फॉर्मेट है इसमें आपको थ्रू आउट अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान टीम की जो फॉर्म चल रही है 10 मैच हम लोग लगातार हार चुके हैं, 1 मैच हमारा वॉश आउट हुआ, 2 सीरीज में हमें क्लीन।
लेकिन एक अच्छी खबर जो है ना कि आपको 300 प्लस स्कोर करने लगी आपकी साइड पाकिस्तान, और टॉप से लेके बॉटम तक आपके बैट्समैन इन फॉर्म है
जी। लेकिन अगर आप 400 रन बना देंगे तो फिर 300 रन करके हारेंगे तो फायदा नहीं है ना, बात ये है कि आप 200 करें लेकिन मैच जीते।
सही बात,
अभी तो 400 करके भी मैच हारेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। बैटिंग लाइन आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई मसाइल ऐसे नजर आ रहे हैं। आप देखें, बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर है, मुझे बड़ी पसंद है उनकी बैटिंग, लेकिन अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखें तो कोई इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। इसी तरह इमामुल हक है, वो भी स्कोर कर रहे हैं लेकिन उनका भी स्ट्राइक रेट कुछ इतना अच्छा नहीं होता, वो
अब बड़ी मुश्किल से पाकिस्तानी बैट्समैन बेचारे 100 के करीब पहुंचे हैं स्ट्राइक रेट पे, और अब दुनिया जो है वो स्ट्राइक रेट लेके चली गई है 150 तक, उन्होंने आदाब डिफेंड कर लिए।
अभी आप देखिएगा ना, अभी जो वर्ल्ड कप शुरू होगा तो आप देखिएगा उसमें जो प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट होगा दुनिया के दूसरे।
हां, बहुत ज्यादा, और इस इन विकेट और इन कंडीशन इन हालात में तो बहुत लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सलीम फारिक, आप हमारे साथ थे। सामिन, हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। प्रोड्यूसर थी फैजा बुखारी, असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر نے منگل کے روز امریکی قانون سازوں کو بتایا کہ ایران کے ساتھ کشیدگیاں جارحیت کے اس 40 سالہ رجحان کا حصہ ہیں جو اسلامی جمہوریہ نے اختیار کیا ہوا ہے، لیکن ڈیموکریٹک قانون ساز بدستور حکومت کے موقف سے اپنے اختلاف پر قائم ہیں اور مشرق وسطی میں محتاط انداز فکر اختیار کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ نامہ نگار کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
اپنا موقف پیش کرنے کے لیے قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شینہن امریکی کانگریس پہنچے، جہاں انہوں نے کہا،
We do not want the situation to escalate. This is about deterrence.
ہم نہیں چاہتے کہ کشیدگیاں بڑھیں، یہ جنگ سے باز رکھنے کے لیے ہو رہا ہے، جنگ کے لیے نہیں، ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے ہیں، یہ مشرق وسطی میں ہمارے مفادات کے تحفظ اور ان مشنوں کو جاری رکھنے کے لیے کر رہے ہیں جو انجام دینے کے لیے ہم وہاں ہیں۔ یہ تھے امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع۔ وزیر خارجہ مائیک پومپیو کا کہنا ہے کہ خلیج فارس میں آئل ٹینکرز پر اور سعودی تیل کی پائپ لائن پر حملے ممکنہ طور پر ایران کا کام ہے، اور اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو صدر نے کارروائی کے لیے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا تھا،
I think Iran would be making a very big mistake if they did anything. If they do something, it'll be met with great force.
اگر ایران نے کوئی کارروائی کی تو میرے خیال میں وہ بہت بڑی غلطی کریں گے، اگر انہوں نے کچھ کیا تو پوری قوت سے اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن ہمارے سامنے ایسے کوئی اشارے نہیں ہیں کہ وہ کچھ کریں گے، یہ کہہ رہے تھے صدر ٹرمپ۔ لیکن اس بریفنگ سے کچھ قانون ساز قائل نہیں ہوئے۔ آزاد سینیٹر بارنی سینڈرز کا کہنا تھا،
I worry very much. And intentionally or unintentionally, we can create a situation in which a war will take place.
مجھے اس بارے میں شدید پریشانی ہے کہ قصدن یا بلا ارادہ ہم ایسی صورتحال پیدا کر سکتے ہیں جس پہ جنگ ہو جائے، اور مجھے بتانے دیں کہ میرے خیال میں جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ ایسی جنگ کی ابتدا کر رہے ہیں جو لامتناہی ہوگی۔ یہ تھے سینیٹر بارنی سینڈرز۔ ٹویٹرز پر الفاظ کی جنگ جاری ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ٹرمپ کو بتا رہے ہیں کہ دوسروں کا احترام کر کے دیکھیں، یہ کارگر ثابت ہوتا ہے، اور ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے سے نکل کر ٹرمپ حکومت نے وہ حربہ کھو دیا ہے جو وہ ایران پر استعمال کر سکتا تھا۔ ڈیموکریٹک سینیٹر کرس مرفی کے الفاظ،
If the Iranians aren't ready to talk and they are ramping up their provocative actions in the region, that would seem to be a pretty significant indictment.
ایرانی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور خطے میں اشتعال انگیزی کی کارروائیاں جاری رکھتے ہیں تو یہ ہماری پالیسی کے خلاف ایک فرد جرم عائد کیے جانے کے مترادف ہے۔ لیکن ریپبلکنز کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں امریکہ کے سخت موقف نے مدد دی ہے۔ ریپبلکن سینیٹر لنسی گرہم کے الفاظ،
We're at a point in time where we're pushing back against the regime and we're resetting the rules of engagement. So we're letting them know that you've attacked us in the past, you provided IEDs during the Iraq war.
ہم اس مرحلے پر ہیں جہاں ہم ایرانی حکومت کے خلاف دباؤ ڈال رہے ہیں اور معاملات کرنے کے لیے نئے نوعیت کے ضوابط لا رہے ہیں، اور ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ تم نے ماضی میں ہم پر حملے کیے، تم نے عراق کی جنگ کے زمانے میں بارودی سرنگیں فراہم کی جن میں کم از کم 300 امریکی مارے گئے، اور اب وہ دن ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ یہ موقف سیاست سے وابستہ ہے، پالیسی سے نہیں۔ ایوان کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے چیئرمین ایڈم اسمتھ کا کہنا تھا،
سیکرٹری پومپیو میڈ اے ویری لینتھی پولیٹیکل آرگیومنٹ، ہی آرگیوڈ یو نو ہیئرز آل دی ٹیربل تھنگز دیٹ ایران ہیڈ ڈن اینڈ ہی اسپینٹ اباؤٹ 10 منٹس ٹو لائک کٹ ہم آف میکنگ اٹ رائٹ اینڈ ایز ایوری ممبر ہو سٹڈ اپ سیڈ وی نو ایران۔
وزیر خارجہ پومپیو نے ایک انتہائی طویل سیاسی دلیل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں ان تمام ہولناک باتوں کے بارے میں جو ایران نے کی، اور انہوں نے اس میں کوئی 10 منٹ لگا دیے، یہاں تک کہ میں نے انہیں ٹوکا، کیونکہ ہر رکن جو کھڑا ہوا یہی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران برا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ کہ پالیسی کیا اختیار کرنی ہے. یہ تھے ایڈمز اسمتھ, قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.